और इसके बाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद इस प्रकार से है, मैं चाहती हूं कि ये सारी विपत्तियां फिर आएं, जिससे हम आपका पुनः दर्शन कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का यह अर्थ है कि हमें बार बार जन्म मृत्यु नहीं देखना पड़ेगा। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुता कमलवरम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जाता सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरु दीनतारणं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवी गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। महारानी कुंती देवी की प्रार्थना के ऊपर श्री प्रभुपाद द्वारा किया हुआ प्रवचन, उसकी चर्चा हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये इंग्लिश पेज 48 का जो लास्ट पैराग्राफ है, वहां से हम आज का प्रवचन आरंभ करेंगे। इसमें प्रभुपाद जो आधुनिक जीवन शैली है, दिस इज द मॉडर्न फिलोसॉफी ऑफ हेडनिज्म बट इट डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू द फैक्ट्स। आधुनिक भोगवाद जो अलग अलग नामों से अलग अलग रूपों से, लेकिन इस भौतिक जगत में एक ही प्रकार का वाद प्रचलित है और वो है भोगवाद। प्रभुपाद इसकी वर्णना करते हैं। आई एम नाउ इन ए कंफर्टेबल पोजिशन, आई हैव इनफ मनी एंड ए गुड एस्टेट, आई हैव एम्पल कंफर्ट्स एंड इनफ फूड। When this body is finished, I'm not going to take birth again. So as long as I'm living, let me enjoy life. जब तक मैं जीवित हूं तब तक मैं बहुत आनंदी हूं, मेरे पास अच्छा घर है, खाने के लिए सुविधा है, सारे भोगों की साधन उपस्थित होने पर, और इसके आगे जीवन क्या होगा किसने देखा है। प्रतिदिन सुबह मैं थोड़ा मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ और एक हमारे ऊपर एक वॉकवे बनाया है हैंगिंग गार्डन के ऊपर, तो उधर एक बेंच पर कभी बैठकर थोड़ा कुछ प्रवचन वगैरह सुनने का भी अवसर मिलता है। तो कुछ तो पेपर में आया था, मुझे मालूम नहीं क्या हेडलाइन थी या कुछ थी, लेकिन एक व्यक्ति जिसका बड़ा तिलक था अलग प्रकार का और बड़ी मूछें ऐसा एकदम क्षत्रिय टाइप लग रहा था, तो वो देख रहा था कि देखो देखो पाकिस्तान क्या कर रहा है। और सब अपरिचित व्यक्ति थे, ऐसे कोई एक दूसरे के दोस्त नहीं लग रहे थे। फिर उनका मुद्दा चला गया इसके ऊपर कि अब तो उनको बोलना चाहिए या तो आप रहो या हम। तो मैं देख रहा था कि दो तीन लोग ज्यादा उत्साह से उस डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं। फिर जो क्षत्रिय टाइप व्यक्ति था वो तो सबको गाली देने लगा, सब ये इंडियन पॉलिटिशियन लोग खराब है, ये हिंदू धर्म के नेता लोग भी खराब है, ये हिंदू धर्म में भी कुछ रखा नहीं है। और एक आंख मेरी तरफ थी कि मैं कुछ बोलता हूं कि मैं कुछ देखता हूं, लेकिन मैंने कुछ उधर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन मजे की बात यह है कि एक बूढ़ा सा व्यक्ति वो उसकी हां में हां मिलाते हुए कह रहा है, अरे भगवान को किसने देखा है, मैंने आज तक भगवान को देखा नहीं है। तो मैं ये सोच रहा था कि जब हम शास्त्र पढ़ते हैं कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रभुपाद की टीका, प्रभुपाद की आलोचना, प्रभुपाद का क्रिटिसिज्म थोड़ा सा सीवियर है, जरा ज्यादा ही कड़ा है। कभी सोचते हैं कि बूढ़े व्यक्ति थोड़े ज्यादा ग्रंपी होते हैं, कभी किसी बात को गाली देना शुरू करते हैं, तो क्या प्रभुपाद भी ऐसे ही कुछ है कि मालूम है ना, बूढ़ा व्यक्ति को अगर किसी ने उसे कुछ सुना नहीं तो दो तीन कड़े शब्द बोल दिए तो कम से कम ये एक साइकोलॉजी बन जाती है कि जब तक मैं कुछ अपशब्द बोलूं नहीं कोई मेरी सुनेगा भी नहीं, तो ही अट्रैक्ट्स अटेंशन बाय यूजिंग वेरी हार्श वर्ड्स। तो प्रभुपाद जी क्यों अपने परपोर्ट्स में खास करके इतने कड़े वर्ड्स, इतने क्रिटिसिज्म, इतना सीवियर क्यों है? तो मैं सोच रहा था कि देखो ये व्यक्ति, अगर इस व्यक्ति को एक सैंपल समझा जाए कि ये व्यक्ति कह रहा है कि भगवान है नहीं क्योंकि आज तक मैंने देखा नहीं उनको कभी, प्रश्न उपस्थित ये होता है कि आप हैं कौन, आपकी योग्यता क्या है, आपके पास क्वालिफिकेशन क्या है, दूसरी बात ये आपने कितनी कोशिश की है, आपने कितना प्रयास किया है किसी योग्य व्यक्ति के पास जाने का, या सबसे पहले आपके पास कोई इच्छा भी है वो तो देखने की। जैसे कोई व्यक्ति कहेगा कि मुझे संस्कृत भाषा बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि मुझे आती नहीं। तो क्यों नहीं आती? कि नहीं, एक दो बार मैं कुछ पढ़ने की कोशिश की लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, उसका ग्रामर व्याकरण बहुत टफ है, या ऐसा है वैसा है। तो निश्चित ही ऐसा व्यक्ति जीवन भर अगर किताब लेके बैठेगा तो थोड़ी उसको समझ नहीं आने वाला। कई लोग अपने इस भौतिक जीवन के अनुभव के ऊपर गौर करते हैं। राधा गोविंद महाराज अपने प्रवचन में बताते हैं कि एक भक्त, हरे कृष्ण भक्त, किसी एक लगता है कोई मायावती वगैरह कोई होंगे ऐसे हरिद्वार में सन्यासी, उनसे कुछ बहस कर रहे थे, तो उन्होंने अपने बाल की तरफ उंगली दिखाकर कहा कि ये मेरे बाल कैसे पके हैं पता है? तो एक भक्त पास में था, उसने कहा अरे ज्ञान के मसाले में पके हैं इनके बाल। तो और गुस्सा हो गया वो। लेकिन वास्तविक बात ऐसी है कि इस जीवन भौतिक लाइफ का अनुभव भले 80 साल का अनुभव है, लेकिन जब तक योग्य गुरु ना हो तो उस केवल अनुभव का कोई महत्व नहीं है। जैसे कोई स्कूल का कोर्टयार्ड है, कंपाउंड है, वहां पर हर रोज बच्चे आते हैं, हजारों बच्चे पढ़ के फिर ग्रेजुएट होते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेकर बाहर चले जाते हैं,
कोई एक गाय या कोई पशु भी रोज स्कूल का कंपाउंड खुलने पर अंदर घास चरने के लिए अंदर आए और बाद में उसका सिक्योरिटी वाला उसको बाहर निकाले, तो पिछले 40 साल से वो गाय अंदर आती है, लेकिन उसको कुछ ज्ञान होगा? स्कूल में केवल जाना, हम सोचते ना ये स्कूल गया है या कॉलेज गया है, केवल जाने से ज्ञान नहीं होता, वहां जाकर कुछ एसिमिलेट करना चाहिए, कुछ पढ़ना चाहिए। तो ये कलयुग के लोगों की धारणा है कि मैंने आज तक देखा नहीं तो इसका मतलब शायद नहीं है, लेकिन मैं कौन हूं, मेरा अनुभव कितना इंपॉर्टेंट है, या मुझे अपने अनुभव पर कितना जोर देना चाहिए। एक रशिया में बड़े प्रोफेसर मिले प्रभुपाद से और उनका भी एक स्टेटमेंट यही था, स्वामी जी हमारी धारणा यह है कि मृत्यु के पश्चात शरीर के अंदर जो रहने वाला उसका स्वामी है उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो प्रभुपाद ने कहा ये बड़े बड़े प्रोफेसर लोग ऐसे बोले, भारत में रिक्शा वाला जानता है कि ये हमारा जीवन आखिरी जीवन नहीं है, इसके आगे भी और जीना है, मैंने पिछले जन्म में कुछ किया था इसलिए मुझे अभी रिक्शा चलानी पड़ रही है, अगर इस जन्म में मैं कुछ अच्छा करूंगा तो फिर ऐसे कष्ट करने की नौबत नहीं आएगी। एक दूसरे लेक्चर में प्रभुपाद जी बताते हैं कि शायद भोगवादी लोगों को ये पता है कि आने वाले जीवन में आज के आज तक किए हुए सारे पापों का हिसाब निकाला जाएगा और उससे उनको बहुत डर लगता है। इसलिए सबसे आसान फिलॉसफी क्या है कि अरे अगला जीवन है ही नहीं, एक बार जीवन है ही नहीं फिर क्या है, फिर मौज करो। इसको इंग्लिश में हेडनिज्म कहते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, कुंती हाउएवर इज अवेयर ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड शी इज एंग्शियस नॉट टू रिपीट दिस प्रोसेस। कुंती देवी ऐसे लोगों में से नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि कुंती देवी जैसे भगवान से कहते हैं कि मुझे बहुत डर लगता है इस भौतिक जीवन से, प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थना में कहते हैं कि मुझे भौतिक जगत से बहुत डर लगता है, या प्रभुपाद जी की प्रार्थना कल ही एक महाराज बता रहे थे मंदिर में, अमेरिकन लोग हैं जो बहुत ओपन लोग हैं, ऐसे खुलकर प्रश्न पूछते हैं। एक बार भक्तों ने देखा कि प्रभुपाद जी ऐसे एकदम उत्कट प्रार्थना करके खड़े हो गए और उनकी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं, तो अर्थात उनके गुरु हैं वो, तो हर समय गुरु से प्रश्न नहीं पूछते कि ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं, लेकिन एक अमेरिकन स्टाइल है। तो भक्त ने पूछा क्या हो गया प्रभुपाद, आप रो क्यों रहे? बोले मैं प्रार्थना कर रहा था। बोले क्या प्रार्थना कर रहे थे आप? बोले मैं भगवान से ये प्रार्थना कर रहा था कि मेरा पतन ना हो। तो उसमें से जो थोड़े सीनियर थे उपस्थित, उन्होंने कहा प्रभुपाद जी आपका तो पतन कभी होगा ही नहीं। तो फिर प्रभुपाद जी ने इसका रहस्य बताया, क्योंकि मैं सदैव ऐसी प्रार्थना करता रहता हूं कि मेरा पतन ना हो, मेरा पतन ना हो। तो शुद्ध भक्त को यह प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, शुद्ध भक्त को इस भौतिक जीवन से डरने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब वो यहां पर आते हैं तब वो अपना बिहेवियर बिल्कुल ऐसे एक साधक जैसा करते हैं जिससे कि साधक सीखें कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। अगर शुद्ध भक्त यहां पर आकर किसी भी नियम का पालन ना करें तो नवसाधक भी सोचेंगे कि यही आध्यात्मिक जीवन है कि कोई भी नियम तोड़ दिए, कहीं भी जाओ कुछ भी करो। ऐसे हुआ था पहली बार जब 1972 के बाद कार्तिक में प्रभुपाद जी शिष्य लेकर आना शुरू कर दिए वृंदावन में कार्तिक के लिए, तो कई भक्तों के मन में ये धारणा थी कि वृंदावन मतलब क्या है, एक कृष्ण का अपना घर है, ये सारे लोग वहां पर कृष्ण भक्त हैं, सब कुछ कृष्णमय है, 5000 मंदिर है। तो एक दिन एक वहां के एक वरिष्ठ नागरिक प्रभुपाद जी से मिलने आए और प्रभुपाद जी से पूछा, हमने सुना है कि आप यूरोप अमेरिका से बहुत सारे बंदर लेके आए हैं। तो प्रभुपाद ने कहा क्या क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं मुझे दो तीन दुकानदार बता रहे थे कि यूरोप अमेरिका से आप बहुत सारे बंदर लोग इंपोर्ट करके लेके आए हैं। तो प्रभुपाद ने कहा साफ साफ बताइए ना क्या हो गया है। बोले कुछ आपके भक्त किसी फल वाले के पास, किसी मिठाई वाले के पास जाकर उसके दुकान से मिठाई ले रहे हैं, हरे कृष्णा जय श्री राधे, और चले जा रहे हैं। तो फिर प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा कि हे आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा हमको लगा ये सारा कृष्ण का ही है ना, ये तो सारा प्रसाद है, ये सब कुछ अपना ही है, ये पूरा ब्रज भगवान कृष्ण का है, हम भी भगवान कृष्ण के हैं, तो ये पैसे पैसे देने की जरूरत क्या है, हम तो अपने घर में आए हैं। तो ये उच्छृंखल व्यवहार ये कभी भी सम्मत नहीं होता शास्त्र को। प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, भले हम भक्त हैं, भले वो भी भक्त हैं, लेकिन फिर भी हमको सारे नियमों का पालन करना चाहिए। इसी सिद्धांत को थोड़ा और एक्सट्रीम लेकर कई लोग सोचते हैं कि इसका मतलब भगवान के भक्त भी नियमों के अंतर्गत होते हैं। सोचने की कोशिश, समझने की कोशिश कीजिए। एक तो ये कि भगवान के भक्त एक बार मैं भगवान का भक्त हो जाऊं तो कोई नियमों की पालन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक ऐसे ही बाबा मिले थे भक्तों से मध्य प्रदेश में ग्वालियर में, और भक्तों ने उनसे कुछ गीता के बारे में पूछा तो वो बहुत अच्छा सुना रहे थे गीता के अंदर इंटरनल मीनिंग्स, और गीता में ऐसे कहा गया, गीता में वैसे कहा गया है। डिवोटी इज वेरी इंप्रेस्ड कि ये व्यक्ति बड़ा अच्छा जानकार है। फिर प्रोग्राम के बाद वो भक्त जो था वो बीड़ी पी रहा था, तो एक भक्त ने पूछा आप साधना करते हैं, आप भक्त हैं, तो ये बीड़ी क्यों पी रहे हैं? बोले मैं तो अवधूत हूं, मैं इतना पहुंचा हुआ हूं कि ये छोटे छोटे नियम, अगर मैं नियम तोड़ भी दूं तो ये मुझे डिस्टर्ब नहीं करते मेरी साधना में। तब प्रभुपाद जी से मैंने पूछा, प्रभुपाद ने कहा कि ये मेंटालिटी नहीं, दिस हैज किल्ड इंडियन कल्चर, कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी अधिकार के अपने आप को एकदम ऊंचा समझकर ये नियमों को तोड़ देता है। अभी सच में उस व्यक्ति का गीता का अभ्यास अच्छा होगा भी, लेकिन ये नियम पालन न करने पर अभी इसका गीता का अभ्यास और बीड़ी पीने की आदत, सामान्य व्यक्ति को पूछेंगे कि क्या आपको लेना चाहिए इसमें से, तो वो पहले बीड़ी पीने की आदत लेगा ना, ये इजी टू इमिटेट। रोज गीता पढ़ना ये इजी नहीं है इमिटेट करने के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी अपने किताब में खास करके स्ट्रेस करते हैं, नेक्टर ऑफ ड्यूशन बताते हैं वो, कि नियम पालन करने की आवश्यकता न होने पर भी एक उत्तम अधिकारी सारे नियमों का पालन करता है। अभी एक तो प्रभुपाद जी का जो 7-8 साल का प्रीचिंग था 65-77 12 साल का, तो उसमें इतने बिजी थे वो, इतने हजारों लेटर्स लिखना, भक्तों को दीक्षा देना, पृथ्वी की प्रदक्षिणा करना। तो एक दिन एक भक्त ने हरीशोरी प्रभु से पूछा कि क्या प्रभुपाद 16 माला जाप करते थे? सोचो इतना मन में डाउट आ सकता है कि इतना व्यक्ति कैसे कुछ करेगा, इतने बुक्स का ट्रांसलेशन, ऐसे 18 बुक्स लिखना, फिर इतना मैनेज करना, क्योंकि जो प्रभुपाद ने किया है उसका 1 फ्रैक्शन करते करते लोगों की सांस फूल जाती है। कभी कभी तो ग्रुप ऑफ प्रभुपाद डिसाइपल्स वो एक ही सेंटर को देख रहे हैं कि फिर भी कर रहे हैं, ये बहुत डिफिकल्ट है। तो वर्ल्ड वाइड सारा मूवमेंट चलाना कितना डिफिकल्ट है। तो एक बीच में ऐसा एक मूड आ गया था कि प्रभुपाद नीड नॉट चैंट हरे कृष्णा 16 राउंड्स, नीड नॉट, हाँ ये मतलब उनका ग्लोरिफिकेशन है, उनको क्या जरूरत है, तो 24 घंटा जाप करते हैं। भगवान कृष्ण निश्चित तो उनके 16 माला को देखते नहीं होंगे, लेकिन हरीशोरी प्रभु ने कहा कि मैं 1.5 साल उनके साथ था, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन किसी एक सर्वेंट ने उनके साथ जो सेवा की है 18-19 महीना उनके साथ था मैं, और एक दिन भी मैंने उनको उनके जाप के नियमों में लैक्स नहीं देखा। कि उन्होंने कहा हरि सोने का टाइम हो गया और 4 माला बाकी है, चलो कल कर लेते हैं या 5 कर लेते हैं। सत्यरूप महाराज अपने जपा रिफॉर्म बुक में कहते हैं कि कई भक्त ऐसे उनके पास डिटेल पासबुक है, वो एंट्री कितने किए कितने नहीं किए, लेकिन कभी कभी कम से कम 150-200 माला का उनका अभी तक कर्जा है, तीन चार रह के। तो मैंने कहा ये अच्छी बात नहीं है, मैनेज करना चाहिए अपना टाइम उसी प्रकार से कि उस दिन की माला उस दिन में होनी ही चाहिए। अगर इमरजेंसी के दौर पर अगर बीमारी है या कुछ रियल इमरजेंसी है तो बात उसकी अलग है। मेन पॉइंट ये है कि उत्तम अधिकारी भी सारे नियमों का पालन करते हैं। जस्ट टू सेट अ गुड एग्जाम्पल, यही एक बात महत्वपूर्ण है इसमें। एक दूसरा मुद्दा आगे श्री प्रभुपाद प्रवचन को बढ़ाते हुए कहते हैं, समटाइम्स डिवोटीज वेलकम डेंजर्स। एक भक्त कभी कभी अपने जीवन में संकटों का स्वागत करते हैं। ये कैसे? एक तो संकटों से बचने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन संकटों का स्वागत क्यों? प्रभुपाद जी ब्रह्मदेव की एक प्रार्थना यहां पर उद्धृत करते हैं, तत्तेनुकंपां सुशमिक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं ऋद्वाग्वपुर्भिर्विदधां नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदायभाक्। तत्ते अनुकंपा सुशमिक्षमाणो, जीवन में आए हुए संकटों को, तत् उन संकटों को आपकी अनुकंपा समझता हूं मैं, विशेष कृपा है मुझ पर। क्यों? क्योंकि अगर वो संकट आए, उस संकट को देखकर मैं उसको आपका आपकी अनुकंपा समझूं, तो रिद वाग वपु मैं अपने मन से, मैं अपने वचन से और मैं अपनी काया से आपको मैं सदैव नमन करता रहूंगा कि धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। एक व्यक्ति है, उसका एक इंस्पिरेशनल वीडियो किसी ने दिखाया मुझे। ये एक नर्स थी, अच्छी नर्स, और उसका जो पुत्र पैदा हो गया उसको दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, खाली कमर के नीचे एक छोटा सा ऐसा पैर जैसे दिखने वाला एक अवयव, इसमें केवल 3-4 उंगलियां हैं। तो जैसे ही ये बच्चा पैदा हो गया, माता पिता तो बहुत स्तब्ध रह गए कि ये क्या है, अभी इसका फ्यूचर क्या है। लेकिन क्योंकि उनका भगवान में विश्वास था, तो उन्होंने पहले से ही अपने पुत्र को केवल पिटी, केवल एक अरे रे 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 तुमको ऐसा क्यों हो गया, तुम ऐसे क्यों पैदा हो गए। आज की तारीख में वो व्यक्ति अभी 26 साल का है, वो अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट का डबल ग्रेजुएट है, एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट है, उसकी अपनी कंसल्टिंग फर्म है, और वो ऐसे इंस्पिरेशनल लेक्चर्स देते पूरी ऑस्ट्रेलिया का आदमी है, वो ऑस्ट्रेलिया घूमता रहता है। उसकी किताब आने वाली है अभी, नो आर्म्स नो लेग्स नो वरीज। वो बोले ये आप कैसे बोल सकते हैं, नो आर्म्स नो लेग्स नो वरीज। बोला मेरा सारा काम हो जाता है। वो वीडियो में दिखाते हैं कैसे एक घर में एक कंघी लगी हुई है, तो ऐसे ऐसे करके अपना बालों को ठीक करता है, फिर फोरहेड से दबाकर पानी पीता है, कंप्यूटर ऑपरेट करता है, कीबोर्ड पेपर लिखता है, और स्विमिंग करता है, अपने व्हील चेयर में बैठकर घूमता फिरता है, सब कुछ करता है वो। तो उसने कहा 3 चीजें मैंने अपने जीवन में रखी है, परसेप्शन एटीट्यूड फोकस। परसेप्शन का अर्थ है हम किस चीज को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। तो मेरा दृष्टिकोण ये था कि भगवान ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, क्यों किया, बोलो क्यों किया, क्यों किया। मैंने सबसे बहुत जिंदगी में बहुत साल पहले इस धारणा को मन से निकाल दिया कि मेरे खिलाफ किसी ने कोई गलत व्यवहार नहीं किया है, जो भी हुआ है उसके पीछे कोई कारण है। और इस परसेप्शन का जो दूसरा अंग था वो था ग्रेटिट्यूड। मैं भगवान का कृतज्ञ हूं, परसेप्शन हो गया। दूसरा था एटीट्यूड, मेरी एटीट्यूड क्या होनी चाहिए कि अगर मेरे इस जीवन में मुझसे कुछ कर दिखाना है भगवान को तो क्या है वो, क्या चाहते हैं भगवान मैं करूं, उसको मैं ढूंढ रहा हूं। और जो फोकस है वो केवल इसी बात के ऊपर कि मेरे हाथ नहीं है पैर नहीं है, लेकिन बोलते अभी मैं सोचता हूं कि अगर हाथ पैर होते थे तो इतना मैं भगवान के बारे में नहीं सोचता था जितना कि आज मैं दिन भर भगवान को कृतज्ञता का एक संदेश भेज रहा था कि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अरे कभी कभी हाथ पैर वाले लोग भी इतने खुश दिखते नहीं इतना ये व्यक्ति दिखता है। तो अब उसकी धारणा कोई एकदम ऐसे शुद्ध भक्त जैसे नहीं है, लेकिन फिर भी आज के जीवन में भी ऐसे व्यक्ति देखकर हमको बहुत इंस्पिरेशन मिलता है कि मेरे पास सब कुछ है फिर मुझे क्यों भगवान को दोष देना कि मुझे ये क्यों नहीं दिया है, मुझे मेरे जीवन में ये क्यों नहीं मिला मुझे। एक और एक बात प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवान को ग्रेटिट्यूड व्यक्त करेगा, कृतज्ञता व्यक्त करेगा, उसको समझना चाहिए। प्रभुपाद जी का उदाहरण है, किसी व्यक्ति को जज बोलते हैं इस गुनाह में आपको दोषी ठहरा जाता है और आपके लिए जुर्माना है फाइन $100,000। अब बोलेंगे बाप रे इतना बड़ा फाइन, लेकिन आपके लिए खास छूट है, यू पे ओनली 1 सेंट, आप एक पैसा दो खाली, 1,00,000 रुपए के बदले 1 पैसा दीजिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर जीवन में कुछ हो गया तो भक्तों को यह समझना चाहिए कि इतना बड़ा होने वाला था लेकिन भगवान ने उसको छोटा करके दिया। कहां 1,00,000 रुपए का जुर्माना और कहां उसके बदले 1 पैसा भरने की जरूरत। दैट इज द मेंटालिटी, दैट इज द डिफरेंस। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, मैं उसको इंग्लिश में पढ़ूंगा। पहले वी शुड सिंपली डिपेंड ऑन कृष्ण कॉन्शियसनेस बिकॉज इफ वी लिव कृष्ण कॉन्शियसली अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस वी शुड नॉट रिटर्न टू दिस मटेरियल वर्ल्ड और पुनर्भव दर्शनम। इफ वी रिपीटेडली थिंक ऑफ कृष्णा, सी कृष्णा, read of Krishna, work for Krishna and somehow or other remain in Krishna consciousness, we benefit in such a way that we shall be saved from taking birth again in the material world. That is the true benefit. Agar hum sadaiva Bhagwan ke bare mein smaran karein, Bhagwan ke bare mein Bhagwan ko dekhein, Bhagwan ke bare mein padhein, Bhagwan ke liye karya karein, yena kena prakaren agar hum Krishna ke bare mein sochte rahe, to itna laabh hoga कि हम फिर इस भौतिक जगत में एक भौतिक जन्म नहीं लेंगे, जो कि हम हरे कृष्ण आंदोलन में सदैव हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने से करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे श्री प्रभुपाद एक बहुत सुंदर पॉइंट उपस्थित करते हैं जो कि पांडवों के जीवन में जो दुख आए उनको देखकर भीष्म देव तक के जैसे लोग उनके आंखों में आंसू आ गए। अब हम जरा इसके ऊपर विचार करेंगे। भीष्म देव एक वसु हैं, द्यू नाम के एक वसु, जिनको इस भौतिक जगत में जन्म लेने का शाप मिला क्योंकि गंगा देवी का उस घटना में संबंध था, तो वो गंगा देवी के पुत्र हो गए, गंगा पुत्र। हम जानते हैं कि शंतनु महाराज गंगा देवी को देखकर उन पर लुब्ध हो गए, उन्होंने पूछा कि आप मुझसे विवाह करोगी क्या, तो उन्होंने कहा आप जानते नहीं मैं कौन हूं, बोले नहीं उसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ विवाह करूंगी लेकिन एक शर्त के ऊपर, विवाह के बाद जो भी कुछ होगा, मैं जो भी कुछ करूंगी, अगर आप मुझे टोकोगे कि ये क्यों कर रही हो इसे, तो मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। तो शंतनु महाराज ने सोचा कि क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा कुछ खर्चा करेगी एक्स्ट्रा, कुछ शॉपिंग करेगी, कुछ जरूरत नहीं ऐसी चीज खरीदेगी। नॉर्मली हस्बैंड के लिए और क्या होगा कि वाइफ करेगी कुछ। बोला ठीक है, आप जो कहेंगी मुझे मान्य। तो ये तो एकदम देवांगना जैसी थी, रूप लावण्य सौंदर्य व्यवहार बातचीत सब कुछ देवांगना, देवताओं की कन्या जैसे। लेकिन पुत्र प्राप्ति के बाद, एक पुत्र होने लगा तो पुत्र हो रहा है तो राजा और खुश थे, और पुत्र के जन्म के त्वरित बाद इस स्त्री ने उसको जाके महाराज के सामने गंगा जी में फेंक दिया, और ऊपर से कहती है आपका भला हो। तो उनसे सहा नहीं गया, ये क्या कर रही है ये। लेकिन जो वचन था, उस वचन के दबाव के कारण कुछ बोल नहीं पाए। तो एक दो तीन चार ऐसे करते 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 उसने जो भी पुत्र होता था उसको फेंक दी थी वो पानी में। अब की बार जो पुत्र हो गया उनसे रहा नहीं गया, उसने हाथ पकड़ कर क्रूर स्त्री तू क्या करनी चाहिए, ये मेरे पुत्र हैं, ये इस राज्य को संभालेंगे, और कितना मेरे मन में कितने सपने हैं, मेरे मन में कितनी आशा है, और तू क्या कर रही है ये। तो उसने कहा महाराज अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। और फिर उसने बताया कि मैं गंगा हूं, ये सब अष्टवसु हैं, उनको शाप मिला था तो उनको मैं गंगा जी में डालकर फिर उनको मैं ऊपर भेज रही हूं उनकी भलाई के लिए। लेकिन अब जिस पुत्र के बारे में आपने मुझे रोका है वो ऐसा वसु है जिसको यहां पर रहना पड़ेगा। अब तो जी अगर ऐसा कोई रिविलेशन हो तो कितना दर्द और होगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप शोक करने की कोई बात नहीं है, इस पुत्र को मैं अपने पास रखूंगी और उसको अच्छी तरह से प्रशिक्षित करके आपके पास रहेगा वो। ये पुत्र आपका नाम यश शोभा सब कुछ बढ़ाएगा। और वैसे ही गंगा पुत्र जो था वो शंतनु महाराज का लास्ट पुत्र, वो जब छोटा था 8-10 साल का तभी आ गया, तेजस्वी शूर सारे शस्त्र अस्त्र चलाने में पारंगत, और सब कहने लगे कि ऐसा राजा मिलने पर अभी क्या है, कोई चिंता की बात है ही नहीं। फिर जैसे ही वो बड़ा होते गया एक दिन उसने देखा कि राजा फिर चिंतित हैं। तो उसने अपने मंत्रियों से पूछा कि क्या बात है। तो एक सारथी था उसने कहा कि हम लोग उस दिन शिकार करने गए थे तो बीच में किसी एक मछुआ फिशरमैन की एक कन्या को देखकर राजा के मन में फिर इच्छा हुई कि मैं विवाह करूं। तो बोले फिर जाके पूछो। बोले नहीं, वो क्या सोचते हैं कि आप तो हैं अभी और आपका राज्याभिषेक होने वाला है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी माँ ने मुझे एक ही बात बताई है कि पिता की संतुष्टि के लिए कुछ भी करो। तो बोले मैं बात करता हूं उस मछुए के साथ। तो उस फिशरमैन विलेज में गए वो, और मैंने पूछा कि आपकी जो कन्या है वो मैं मेरे पिता के लिए पत्नी के रूप में मांग रहा हूं। तो वो जो था वो फिशरमैन वो तो बहुत ही बुद्धिमान था, उसने कहा अरे मेरी बेटी जाएगी लेकिन उसके बच्चों का क्या। बोले नहीं नहीं उसका हम ठीक से व्यवहार करेंगे, देखभाल करेंगे। तो ठीक है मेरी ये कंडीशन सुनो, जो मेरी बेटी का जो पुत्र होगा वो राजा बनेगा। और गंगा पुत्र ने कहा मान्य। बोले एक मिनट मान्य है कैसे, आप कल विवाह करोगे तो आपकी जो पत्नी होगी वो तो यही कहेगी कि ये राजा की भले पत्नी है लेकिन ये तो फिशरमैन कास्ट की है, इसके पुत्र को थोड़ी कोई राजा बनाएगा, ये जो वास्तविक गंगा पुत्र जैसा कोई है उसके पुत्र भी राजा बनाएंगे। उस समय गंगा पुत्र ने दोनों हाथ ऊपर करके ऐसी प्रतिज्ञा ली कि जो मेरे सारे देवतागण मुझे देख रहे हैं, ऋषि सिद्ध चरण देवगण और मेरे पितर, उन सबको समक्ष रखकर मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, जिससे मेरा पुत्र न होगा और जिससे इस मत्स्यगंधा, बाद में उसका नाम पद्मगंधा भी हो गया, उसका पुत्र ही राजा बनेगा। एक क्षत्रिय के लिए ऐसा वचन लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा था वो, लेकिन उन्होंने लिया तो देवगणों ने उनके ऊपर पुष्प वृष्टि की और भीष्म का मतलब है वेरी हार्ड, बहुत कठिन कार्य या कोई बहुत ही डेंजरस कार्य, कैलामिटस, संकटग्रस्त, संकटों से भरा हुआ कोई कार्य करना। तो भीष्म देव ने तब से एक ही उनके मन में धारणा थी, ये हस्तिनापुर का राज सिंहासन और मेरी लॉयल्टी, ये दोनों अभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और आखिरी सांस तक उन्होंने कभी इस उस लॉयल्टी को कभी उससे कभी वो निवृत्त नहीं हो गए। उन्होंने कहा था कोई भी यहां पर बैठे, जो यहां पर सिंहासन पर बैठेगा मैं उसका सेवक। तो फिर उन्होंने अपनी जो नई मां, उसके पुत्रों के लिए ये लाए, व्यासदेव को बुलाकर नियोग पद्धति से पुत्र पैदा किए गए, फिर उनके लिए कन्याएं लेके आए वो, और डेस्टिनी के इससे खुद अटक गए एक झमेले में कि एक युवती कन्या अंबा जिसको वो लेके आए थे, अंबा के अंबिका अंबा, तो अंबा ने कहा कि भीष्मदेव आप मुझे लेके तो आए लेकिन पहले से ही मैंने किसी का वरण किया है। तो बोले अच्छे तो आपने पहले बताया क्यों नहीं, तो आप जाओ उस राजा से विवाह करो। तो राजा के पास गई वो, तो उसने कहा कि नहीं, ये भीष्म ने मुझे भरी सभा में हराया है, उसने मेरा अपमान किया है, और वो अगर आपको जीत कर ले गया तो मैं फिर आपका स्वीकार नहीं कर सकता, आप जाओ। तो वो फिर उनके पास आ गई, कहने लगी कि वो कह रहे हैं कि वेले वैसे तो मैंने आपको वचन दिया था पहले, लेकिन अब आप मुझे जीत कर ले गए तो उनको अभी अपमानित लग रहा है कि क्यों मैं किसी की जैसे किसी का झूठा अन्न या किसी का पहना हुआ वस्त्र क्यों कोई इस्तेमाल करेगा। तो भीष्म ने कहा कि मैं तो विवाह नहीं कर सकता। वो बोले ऐसे कैसे, अभी ये भी नहीं ले रहे, वो भी नहीं ले रहे, आप मुझे जीत के ले गए, आपको लेना ही पड़ेगा मुझे। तो उन्होंने कहा सुन लो, मैं किसी भी स्त्री का स्वीकार नहीं करूंगा। तो उसने सोचा क्या करना चाहिए, तो किसी ने कहा कि इनके भी एक गुरु हैं, उनके पास जाइए आप। तो वो परशुराम के पास गई, परशुराम ने कहा हाँ मैंने उसको कुछ अस्त्र वस्त्र सिखाए। तो परशुराम ने कहा भीष्म इनसे विवाह कर दो। बोले नहीं, बोले आप गुरु का अवमान कर रहे हैं, आप गुरु की आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं। तो उनको भी शास्त्र मालूम था, उन्होंने कहा कि ये एकमात्र आज्ञा ऐसी है जो शिष्य अगर नहीं चाहे तो नहीं मान सकता, उसको कोई बाध्य नहीं है कि वो मानना ही चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी से ये परंपरा चलती आ रही है। ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों से कहा था सनक सनातन सनंदन सनत कुमार क्या प्रजापति बनो, उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तो नहीं, अभी क्या करेंगे, लेकिन गुस्सा आ गया बहुत। तो उस क्रोध से रुद्र प्रकट हो गए। तो परशुराम ने कहा कि ये मेरा शिष्य सबके सामने कह रहा है कि मैं आज्ञा नहीं मालूम पालन करूंगा, ठीक है युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो कुछ 27 दिन तक दिन रात ये अस्त्र चला रहे शिष्य, ये गुरु ऊपर अस्त्र चला रहे, और बाद में दोनों को समझ में आ गया कि हम दोनों एक दूसरे को पराभूत नहीं कर सकते। परशुराम तक को चुनौती देने वाले भीष्म, और बाद में उन्होंने एक कुरुक्षेत्र का युद्ध उसके उनके लिए कुछ भी नहीं था। एक तो ऐसी शपथ लेने से वो इच्छा मरणी हो गए थे, उनके पिताजी ने कहा था कि आप जब आपकी इच्छा हो तभी आप मरोगे। ऐसा नहीं है कि शायद शरीर बुढ़ापे से जर्जर होता जा रहा है, लोग कहेंगे अरे मरूंगा तो छूट जाऊंगा, ऐसे नहीं। इच्छा मरने का मतलब है कोई दुख नहीं, कोई वेदना नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कुछ नहीं। महाभारत में देखते हैं उनका वर्णन ऐसे आता है कि इतनी बड़ी दाढ़ी, सफेद एकदम, लेकिन शरीर कैसा है। ऐसे भीष्मदेव के मन में क्या इच्छा होगी, एक इनकी इच्छा अगर होगी जो जिसमें उनका एक्चुअली स्नेह प्रेम सब गया है, वो क्या इच्छा हो सकती है। वो एक ही थी कि युधिष्ठिर को मैं अगर राजा के रूप में देखूं तो मेरे मन की सारी इच्छाएं धुल जाए। लेकिन पद पद पर देख रहे हैं कि दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण ये बार बार उनका अपमान कर रहे हैं, बार बार उनके उनकी उनकी योजना में बाधा डाल रहे हैं। एक्चुअली भीष्मदेव की स्थिति जो है वो सब कुछ कर सकते हैं, वो चाहे तो सारे कौरवों को एक साथ एक ही हाथ से मार सकते हैं वो, लेकिन देखा कि ये लोग राजा बने हैं, सब षड्यंत्र, सब कॉन्स्पिरसीज सब देखा उन्होंने, द्रौपदी का अपमान देखना पड़ा उनको। इसलिए दुर्योधन के मुख में एक वाक्य है गीता में कि और देखो ये सेना, हमारी सेना अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम। अभी दुर्योधन पॉलिटिशियन है, एक नंबर का पॉलिटिशियन, वो जब कह रहा है ऐसे उसका एक ही मीनिंग नहीं होता। विश्वनाथ चक्रवर्ती बाद वो बहुत सुपर इंटेलिजेंट है दुर्योधन के मन की बात जानने में। देखिए दुर्योधन क्या कह रहा है, जाके वो द्रोण से ये कहता है, आचार्य द्रोण से, अपर्याप्तम तदस्माकम, अपर्याप्तम लिमिटलेस, हमारी सेना की शक्ति है वो लिमिटलेस है, अपर्याप्तम तद अस्माकम, अस्माकम नाम मेरी सेना, बलम भीष्माभिरक्षितम, और बल कहां से आता है कि भीष्म देव ने इसको रक्षण किया है इसलिए। तो कोई कहेगा अच्छी बात है, स्तुति कर रहा है अपने सेना की, अपनी भी कर रहा है स्तुति और भीष्म देव की भी कर रहा है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कहते हैं कि नहीं, ये जो अपर्याप्तम है ये संस्कृत शब्द का दूसरा अर्थ क्या होता है, इनसफिशियंट, इनसफिशियंट, अपर्याप्तम, पर्याप्त नहीं है ये। क्यों अपर्याप्तम तद अस्माकम, ये मेरी सेना है लेकिन इसका इसका जो स्ट्रेंथ है वो मुझे इनसफिशियंट लग रहा है, कम लग रहा है। क्यों, क्योंकि भीष्माभिरक्षितम। बोले ऐसे कैसे, बोले ये भीष्म क्या है, शरीर मेरे पक्ष में है और लेकिन मन तो उस पक्ष में है। देखो कैसे प्रेम से देख रहे हैं अर्जुन को, युधिष्ठिर को, सबको, इनको उनको। तो हमारे आचार्य बहुत इंटेलिजेंट है, और क्योंकि पहले जो 6-7 श्लोक है ना गीता के वो प्योर पॉलिटिक्स है, वो प्योर पॉलिटिक्स, मतलब इतना कि हम सोचेंगे शी, इससे अच्छा है कि साफ रहे। एक बार शुरू होता है आचार्य, आचार्य उपसंगम्य, दुर्योधन सोचता है कि पहले किसके पास जाऊं, द्रोण के पास जाऊं कि भीष्मदेव के पास जाऊं। नहीं, द्रोण ब्राह्मण है, अगर मैं ब्राह्मण को पहले एड्रेस करूंगा ना तो क्षत्रियों को अपमान होने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए पहले वो द्रोण के पास गए। और द्रोण जी से क्या कहा, देखिए सामने की सेना देखिए, तव शिष्य न धीमता, आपके शिष्य ने सब हरण किया ये। मतलब हुआ ना इंसल्ट कि आपने वो धृष्टद्युम्न को अगर दीक्षा नहीं दी होती धनुर्विद्या में तो आज ये नौबत मुझ पर नहीं आती थी, लेकिन आप ठहरे बड़े लिबरल ब्राह्मण, उदार मतवादी, देखो अब आपके शिष्य के साथ आपको सामना करना पड़ रहा है। तो ये पहला एक पोक इन द रिब्स। दूसरा ये कि अभी भीष्मदेव का नाम लेना चाहिए, तो भीष्म के ऐसे कहा कि ये भीष्म हमारे पक्ष में है लेकिन वैसे उनका मन तो उधर ही उस पक्ष में है। फिर देखा कि भीष्म द्रोण तो हैं, थोड़े बूढ़े हैं लेकिन, लेकिन बाकी जवान सैन्य जो है वो तो पास में खड़ा है। फिर सबसे कह रहे हैं आइए नहीं चु सर्वेशु, सब लोग अपने जगह खड़े रहो वहां, और सब मैं चाहता हूं मेरी इच्छा ये है कि आप सब सतर्क रहो एकदम। ये दो लोग हैं लेकिन आप समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूं। इस तरह से वो हरेक को खुश करने की कोशिश कर रहा है, भीष्मदेव को, द्रोण को, बाकी जनरल्स को, सबको। और उसमें एक वाक्य उसके मुंह से निकलता है मदर थे त्यक्त जीविता। तो हमारे आचार्य विश्वनाथ बात कहते हैं ये तुमने एक सच बात कही इतने सारी बातों में, क्या मदर थे मेरे इस युद्ध में त्यक्त जीविता, ये लोगों ने अपना अपना प्राण दे दिया है, ये एक सच होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी 100% ट्रू कि ये सब के सब लोग हैं, इतने पावरफुल हैं, अस्त्र शस्त्रधारी हैं, कोई जिंदा वापस नहीं जा रहा क्योंकि सामने कृष्ण और अर्जुन है। इसलिए तो भीष्म ने, और कर्ण और भीष्म का भी कुछ बीच में आनाकानी हो गई, तो कर्ण ने कहा जब तक ये है तब तक मैं नहीं आऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो भीष्मदेव कमांडर इन चीफ बन गए और युद्ध कर रहे हैं वो। फिर वो प्रसंग आता है जब दुर्योधन कहता है कि अरे आप ठीक से युद्ध नहीं कर रहे। बोले कैसे कह सकता है तू कि मैं ठीक से नहीं कर रहा हूं? बोले आप तक जीवन दे सारे पांडव अभी तक जीवित है। तो बोले क्योंकि वो लड़ रहे हैं अच्छी तरह से और उनको आशीर्वाद मिला है। एक छोटी सी बात, पहले युधिष्ठिर महाराज पहले जाके द्रोण और भीष्मदेव के चरण छूते हैं, दोनों को आशीर्वाद देते हैं विजयी भव। तो दोनों को जाने के बाद दुर्योधन कहते हैं कि ये क्या, वो सीधे आते हैं यहां पर इस पक्ष में आपके चरण छूते हैं और आप क्या समझ रहे हैं ये कोई सत्यनारायण की महापूजा हो रही है कि विजयी भव? अरे ये तो पूरा युद्ध होने वाला है इधर। तब द्रोणाचार्य उसे कहते हैं कि तू इतना एरोगेंट, तू इतना मूर्ख भी है और इतना दंभ और दर्प वाला भी है, तू इतना तक नहीं जानता कि बड़ों का आशीर्वाद लेने पर ये आशीर्वाद, बड़ों के चरण छूने पर ये आशीर्वाद अपने आप मिल जाता है। वैदिक कल्चर ऐसा है कि केवल चरण छूने से ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट टू बो डाउन, केवल अपना माथा झुकाओ और सब कुछ मिल गया। तो दुर्योधन इज द एलिमेंट ऑफ कली। महाभारत के युद्ध में अगर दुर्योधन का बर्ताव देखेंगे, हम बिहेवियर देखेंगे, दैट इज अ नेचुरल बिहेवियर फॉर अस इन कली। जिसको उसको पूछते हैं एक बार कि तू क्यों इतना द्वेष करता है पांडवों से, बोलते मैं नहीं जानता, सच में नहीं जानता मैं, लेकिन क्यों मालूम नहीं, उनका बहुत द्वेष होता है मन में। तो ये प्रभुपाद जो लिखते हैं तात्पर्य में कि दिस एज इज इन्फेक्टेड, कंटेमिनेशन इस एज में, कि अपने आप ही भगवान के प्रति द्वेष अपने आप उपजता है। अगर भगवान के प्रति, वैष्णव के प्रति प्रेम करना है तो बहुत कठिन है, उसके लिए कल्टीवेशन की आवश्यकता है। ऐसे भीष्मदेव जब शरशैया पर, तो हाँ तो वो जो अंबा थी वो बाद में शिखंडी बन के आ गई पुरुष के रूप में, लेकिन भीष्म कहते हैं कि मैं ये बाहरी रूप से नहीं जाता, ये वास्तविक वही स्त्री है और स्त्री के साथ तुम युद्ध नहीं कर सकता। तो अर्जुन को ये बताया गया कि शिखंडी आपके सामने रहेगा, ठीक है, और शिखंडी भी तीर चलाएगा और आप भी चलाओ। तो उस युद्ध में भीष्मदेव तीर मार रहे थे लेकिन बीच में जब शिखंडी आता था तब वो अपना हाथ नीचे रखते थे, तब अर्जुन को भगवान पीछे से कहेंगे और चलाओ और चलाओ और चलाओ। कितनी वेदना होती होगी अपने ही परम प्रिय पितामह के ऊपर, एक के बाद एक के बाद एक। लेकिन भीष्मदेव इतने उस, उनका हौसला ऐसा था कि वो इच्छा रहते थे कि एक भी मेरे शरीर में जो शर एरो घुस रहा है वो शिखंडी वाला नहीं होना चाहिए। और बाद में महाभारत में ऐसा वर्णन है कि दो बाणों के बीच में तीसरा बाण नहीं जाए, ऐसे जब शरीर में बाण घुस गए सब, तब वो उधर ही गिर गए, मरे नहीं क्योंकि अभी तक इच्छा मरनी है वो। तो फिर उन्होंने कहा प्यास लगी है, युद्ध में सबसे ज्यादा डेंजर होता है थर्स्ट, प्यास लगती है। तो अर्जुन ने एक तीर चलाया तो स्वयं उनकी मां उपस्थित हो गई गंगा देवी। और आश्चर्य की बात ऐसी है कि वो जो कॉर्नर था वो वहां को उसको वैसे रखते हुए वापस युद्ध शुरू हो गया। द वॉर नेवर स्टॉप्ड। 18 दिन के बाद कौरवों का नाश हो गया और एकमात्र व्यक्ति जानते थे उनकी मन की अभिलाषा, वो है भगवान श्री कृष्ण। और युधिष्ठिर महाराज एक दो लेक्चर है प्रभुपाद के इतने हृदय स्पर्शी है कि सब कुछ मिलने के बाद अर्जुन खास करके युधिष्ठिर महाराज, वो तो जो लोग मरे उनके प्रति जो शोक कर रहे हैं उससे ज्यादा युधिष्ठिर शोक कर रहे हैं, मेरी वजह से ये सब हो गया, केवल मुझे इस राज सिंहासन बिठाने के लिए सब हो गया, हाय हाय मैं ये नहीं सहन कर सकता, क्यों किया गया मेरे लिए ये। प्रभुपाद कहते हैं कि दिस इज वैष्णव, ये एक वैष्णव का हृदय है। भले वो जानता है कि वो अधर्म थी, अधर्म के पक्ष में थे, भगवान कृष्ण की इच्छा थी, फिर भी मेरे लिए क्यों किया गया, वाई मी वाई मी। और उस अवस्था में भगवान कृष्ण ने कहा अभी जाके अच्छा अपना सब मेकअप कराओ। बोले क्या? बोले ऐसे राजा जैसे वस्त्र पहनो, मुकुट माला हाथी घोड़े बैंड वैंड सब कुछ होना चाहिए। तो पांडव सोच रहे क्यों क्यों इतना फोर्स कर रहे ये। और जब इतनी बड़ी शोभा यात्रा, हजारों सैनिक, हजारों इसमें व्यक्ति, सेनाई बज रही है, बैंड बज रहे हैं, और एक हाथी के ऊपर बड़े डेकोरेटेड इसमें युधिष्ठिर महाराज बैठे हुए हैं, ओनली वन पर्सन नोज ये क्यों हो रहा है, क्योंकि भीष्मदेव की मन की इच्छा थी कि एक बार मैं कम से कम धर्मराज युधिष्ठिर को राजा के रूप में देखूं। और जब उन्होंने देखा तब भागवत में इसका वर्णन है, उनके मन में विचार कौन से आए, वो रोने लगे कि क्या सहन नहीं किया है पांच भाइयों ने, मूर्तिमंत धर्म शील सत्व सद्गुण की मूर्तियां ये पांच, और ये पांचों की पत्नी होने लायक द्रौपदी जो भी अनघा कोई पाप किए बिना है, और उनके जीवन में ऐसे संकट। और ये सोचकर भीष्म से आदमी कोई मामूली रोने वाले में से नहीं है वो, लेकिन उनके आंखों से आंसू आने लगे कि ये, और उनका एक्सप्रेशन क्या है इसमें, ये अच्युत भगवान की लीला, हम सब मर्त्य लोगों के परे हैं, अपने भक्तों के जीवन में ऐसा कुछ करके वो क्या हासिल करते हैं, व्हाट डज ही अचीव। बोले ओनली ही नोज, केवल वही जानते हैं। इसके बहुत सुंदर परपोर्ट्स हैं, हमको इसको ठीक ढंग से अगर किसी को अध्ययन करना है तो बहुत अध्ययन योग्य वस्तु है ये। तो प्रभुपाद जी इसमें यही बताते हैं कि कृष्णा विल फुलफिल ऑल योर डिजायर्स टू द फुलेस्ट पॉसिबिलिटी। आपके मन की जो भी भक्ति के बारे में इच्छा है उसका इतना गारंटी रखना कि भगवान पूर्णतम, आपने सोचा भी नहीं होगा उतने ढंग तक भगवान उसको पूर्ण करने की क्षमता रखते हैं, केवल वो टाइम टेबल थोड़ा अलग होता है। आपके मन की इच्छा और उसकी पूर्ति, इसमें भगवान का टाइम टेबल चलता है। तो इसलिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना मुक्ति पदेश दाय भाग, दाय भाग का मतलब है जो किसी करोड़पति का बच्चा है, करोड़पति का पुत्र है, वो करोड़पति कब बनेगा? तो शास्त्र कहते हैं उसको बनने की जरूरत नहीं है, वहां पैदा होकर वो बन गया है। वो ये नहीं बता सका कि मैं गांव में था, एक दिन मैं ट्रेन से मुंबई आ गया, मेरे पास खाली 45 रुपीज थे और आज मेरे पास 2 करोड़ की बिल्डिंग है, देखो कितना टाइम लगा बनाने में, मैं आया तभी 17 साल का था और आज मैं 55 साल का हूं, इतना टाइम गया करोड़पति बनने में, इस बच्चे को कितना टाइम लगा, केवल जन्म लिया उसने बस उतना ही। तो उस छोटे बच्चे को, बालक को करोड़ रुपया हासिल करने में क्या करना चाहिए, शास्त्र कहता है जिंदा रहना चाहिए बस, ही जस्ट हैज टू रिमेन अलाइव एट द प्रॉपर एज दैट मिलियन डॉलर्स, वो करोड़ रुपया उसके हाथ में ऐसे आ जाएगा. सिमिलरली जिसने भी वैष्णव दीक्षा ली है उसको मुक्ति, हम तो मुक्ति के काम ही नहीं है, लेकिन मुक्ति लिबरेशन, पांचों प्रकार के लिबरेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो हमारे हैं आज अभी, लेकिन हमारे हाथ में कब आएंगे? इफ वी रिमेन अलाइव. जिस रिमेन अलाइव, जिंदा रहना चाहिए खाली बस. जैसे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन देना पड़ता है, जैसे हमारा ऑक्सीजन है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. तो इसी से ये आठवां जो श्लोक है इसके तात्पर्य के ऊपर की चर्चा यहां पर समाप्त होती है. अगले टाइम से हम नौवां श्लोक है उससे आरंभ करेंगे. क्वेश्चंस कमेंट्स. प्रभु जी पूछ रहे हैं ये जो जस बी अलाइव है, ये जस बी अलाइव इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये जो जिंदा रहना है, ये जिंदा रहना केवल सांस लेना नहीं, नहीं तो भागवत में बहुत कड़ी आलोचना की है. जीवन शवो, जो व्यक्ति मनुष्य जीवन पाकर कृष्ण की भक्ति करने के लिए इच्छा नहीं रखता वो जीवन शवो, जिंदा होते भी मुर्दा है, मरे के समान है. तो रिमेनिंग अलाइव इन कृष्ण कॉन्शियस का मतलब क्या है? जैसे वेस्टर्न टर्म है ये, रिमेनिंग इन द फायर ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस. जैसे एक लोहार है, एक सोनार है, जवार जवेरी है, जो ऑर्नामेंट बनाता है या कुछ ये करता है, वो क्या करता है? उस लोहे की या सोने की वस्तु को पहले फर्नेस में रखता है, भट्टी में, इन द फायर. फिर उसको शेप देना है तो थोड़े समय के लिए बाहर निकलता है, ठक ठक ठक, फिर से अंदर. तो हम अगर अपने बाहर के कार्यकलाप, ऑफिस, बिजनेस, प्रोफेशन, फैमिली लाइफ, सोशलाइजिंग, इसको ये समझना चाहिए कि हम कुछ समय के लिए फर्नेस से बाहर आ रहे हैं और फिर भौतिक नेचर, बाकी हमारे सगे संबंधी लोग हमको शेप देने की कोशिश करते हैं, तो उसके बाद तुरंत उसको वापस फर्नेस में रखना चाहिए. दैट इज द पॉइंट. रिमेनिंग अलाइव का मतलब है, जिंदा रहने का मतलब है कृष्ण भक्ति में जिंदा रहना. और इसीलिए मॉर्निंग प्रोग्राम, सुबह का कार्यक्रम, मंगल आरती, जाप, ये जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो हवा तो सब जगह है ना, लेकिन टायर में होने चाहिए मुख्य करके. आप ये नहीं कह सकते कि बाहर भी हवा है, अंदर थोड़ी कम है तो क्या प्रॉब्लम हो गया. नहीं, उस पंप से फिर हवा भरनी चाहिए अपने इसमें. तो वैसे ही नाम, भगवान का नाम को आप कभी भी कर सकते हैं, सोते पीते जागते खाते, लेकिन अगर सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का समय है, दैट इज लाइक दैट स्पेशल पंप, वो उस समय जो भरेगा, या कोई चार्जिंग का सॉकेट, उसमें आप डालोगे अपना पिन तो आपका मोबाइल चार्ज हो जाएगा. तो वैसे ये सुबह का चार्जिंग जरूरी है. जितना हम ये अभ्यास करेंगे उतना ही, शुरू शुरू में तपस्या लगती है वो, लेकिन द मेन पॉइंट इज टू रिमेन अलाइव इन द फायर ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस. कृष्ण भक्ति की जो आग है उसमें, उस उत्साह की आग में रहना, दैट इज द मेन पॉइंट. ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन? इनका प्रश्न यह है कि भीष्मदेव की ये मन में इच्छा क्यों हो गई, यही प्रश्न है। इतने बड़े इनका प्रश्न है कि इतने बड़े महाभागवत होने पर भी यही इच्छा थी कि पांडवों को मैं देखूं, यही है। तो ऐसा है, भीष्मदेव की ये इच्छा और किसी एक मामूली व्यक्ति की इच्छा कि मैं मेरे बेटे को एक आईएएस ऑफिसर हुआ देखूं, या मैं मेरे बेटे को एक इंजीनियर बना हुआ देखूं, इट इज नॉट लाइक दैट। ये मामूली नहीं है, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्ति की इच्छा है। और वो व्यक्ति कितना असामान्य है, कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उसके लिए पहले आपको महाभारत पढ़ना पड़ेगा कि भीष्म का कैरेक्टर क्या है। और युधिष्ठिर महाराज को केवल राजवेश में देखना, ये केवल उस वेश की बात नहीं है कि बड़े बड़े गहने पहने हुए हैं, हाथी घोड़े हैं पीछे, ये पॉम्प एंड लग्जरी वाली इच्छा नहीं है। उनके मन में इच्छा थी कि ये राज सिंहासन का प्रोटेक्शन मुझे दिया गया है कि इस सिंहासन का रक्षण करूं, इसकी सेवा करूं, तो उसके लायक व्यक्ति तो होना चाहिए। पुराने राजर्षि जो थे, राजा प्लस ऋषि, उनके मन में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी, ना कि भोग। और वो जो अलंकार, रत्न, माणिक, सुवर्ण, चांदी वो सब पहनेंगे, दैट वॉज इंसिडेंटल। ये केवल ये कलयुग की बात है कि हम सोचते हैं कि अरे देखो इसी गाड़ी, देखो कितनी बड़ी गाड़ी है, हा? एक जज है। और जैसे मेरे पिताजी मुझे बताया करते थे कि एक दिन उन्होंने देखा, ये अभी भी होगा, बॉम्बे हाईकोर्ट का जो रास्ता है, एक छोटा सा रास्ता है, उधर लिखा है दिस रोड इज फॉर द मैजिस्ट्रेट्स कार ओनली। पूरा रास्ता केवल उनकी कार के लिए, मतलब कार भी तो उनकी होगी और रास्ता भी उनके लिए। तो ये देखकर हम कलयुग के जीव, हमारे मन में क्या आता है, ईर्ष्या आती है उत्पन्न पहले। या भक्ति विनोद ठाकुर के घर जाते हैं, एक इंजन और एक डिब्बा एक व्यक्ति के लिए, वो भी ब्रिटिशों ने बनाया। वी गेट एनवी, एक तो एनवी ईर्ष्या उत्पन्न होती है, या तो कभी सोचते हैं कि अरे इतने बड़े भीष्मदेव और इतनी मामूली सी इच्छा करते हैं। नो, उनकी इच्छा ये थी कि भगवान कृष्ण का जो कार्य है वो कार्य करने लायक केवल ही युधिष्ठिर महाराज है। तो डोंट गो बाय जस्ट द आउटवर्ड थिंग कि मैं उनको हाथी घोड़े पर देखना चाहता हूं ताकि वो मतलब मुझे कितना अच्छा लगे, ना। इससे ये भी है कि ये एक व्यक्ति भगवान का भक्त होने पर हजारों करोड़ों लोगों का कल्याण करेगा। That is the main point. ये कैसे बाकी लोगों को भगवत भक्ति में ट्रेन कर सकता है, खुद इसका बिहेवियर, खुद इसका आचरण कितना आदर्श है, ये वो देखना चाहते थे। और ये उनकी इच्छा भगवान कृष्ण जानते थे, इसलिए उन्होंने उसको उस ग्रैंड स्केल पर उसको पूर्ण किया। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब मैं शरीर छोड़ने के लिए तैयार हूं। नॉट ओके, वो भी है। अगर ये इच्छा केवल भौतिक होती, केवल मटेरियल, प्रभुजी का पॉइंट अच्छा है, अगर ये केवल भौतिक इच्छा होती थी कि मुझे केवल एक राजा के रूप में देखना चाहिए, तो भगवान क्यों पूर्ण करते थे उसको? उन्होंने किससे बताया नहीं, दिस इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग। उन्होंने कभी व्यक्त नहीं की कि अभी मैं मरने जा रहा हूं, जैसे मामूली आदमी मरता है, अरे कोई मेरे इतना तो करो, अरे कोई मेरे ये तो लेके आओ, अरे ये मुझे खिलाओ, अरे वहां लेके जाओ, कुछ नहीं कहा उन्होंने। मार्गशीर्ष में युद्ध आरंभ हो गया उस एकादशी को, और उत्तरायण में संक्रांति के बाद भीष्मदेव ने शरीर छोड़ दिया, तो काफी समय गया उसके बाद, और उन्होंने किसी कुछ बताया भी नहीं। लेकिन और बाकी पांडवों को क्या मालूम था कि हमको ऐसे जाना है, वो तो निरीक्षित थे, उनको इच्छा नहीं थी, कृष्ण भगवान ने फोर्स किया कि नहीं आप चलो, मैं जानता हूं इसके पीछे मैं क्यों आपको बोल रहा हूं, इसके कारण मैं जानता हूं। और इसलिए भगवान कृष्ण को देखकर भीष्मदेव ने अपना शरीर छोड़ दिया। ये इमोशंस की बात है। श्री प्रभुपाद की, श्री राधा गोपीनाथ की, ताई गौर प्रेमानंदी।
चार साल से चल रही है, माइक्रोफोन चाहिए मालूम है, लेकिन नहीं होता।
दूसरा माइक्रोफोन था मेरे पास, लेकिन वायर इतना लंबा नहीं, उसका ये वही लास्ट बार मैंने बताया था। किसको बताया? श्यामानंद को, पूजा को। लेकिन वो जो कॉर्डलेस में कौन था, कॉर्डलेस यहाँ तो जा सकता था ना।